सबके जाने के बाद जैन आइलिया के पास आया और उसका घूंघट हटाया। जैन ने कहा, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी आइलिया, तुम सच में इस शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई लव यू जैन, आइलिया ने पलकें झुकाकर धीमी आवाज में कहा। जैन ने उसका चेहरा ऊपर किया। आइलिया ने मुस्कुराते हुए जैन की तरफ देखा। उसने आइलिया को करीब आकर उसके होंठों पर किस किया। आइलिया शर्माते हुए थोड़ा पीछे हो गई। जैन ने कहा, ओह सॉरी, मैं पूछना भूल गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना मेरे इतना करीब आने से? मतलब आइलिया, वो तुम रेडी तो हो? जैन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आइलिया उसके करीब आई और धीरे से बोली, जैन तुम पागल हो क्या? पिछले 7 सालों से हम साथ हैं। हमारे झगड़ों का एक कारण ये भी था कि हम एक दूसरे से दूर थे, और अब भी तुम मुझसे यही सवाल पूछ रहे हो? आइलिया की बात सुनकर जैन मुस्कुराया और उसने लाइट्स बंद कर दी। जैन और आइलिया के बीच की सारी दूरियां मिटकर दोनों एक हो चुके थे। रात के 3 बजे थे। निक और प्रियल दोनों पैलेस की छत पर थे। प्रियल निक को परेशान करने के लिए छत पर भाग रही थी, जबकि निक उसके पीछे ना आकर वहीं फर्श पर बैठ गया। प्रियल ने कहा, कितने बोरिंग हो आप निक। निक ने कहा, और दौड़ते हुए अगर तुम गिर गई तो फिर मैं नहीं उठाऊंगा, चलो आओ मेरे पास। इतनी आसानी से नहीं कैप्टन निक, पहले मुझे पकड़कर दिखाइए। निक ने कहा, गुड़िया मत दौड़ो, गिर जाओगी, तुम भी एंटीक पीस हो, रेडी तो ऐसे हुई हो जैसे खुद की शादी हो, इतनी हैवी ड्रेस और इतनी सारी ज्वेलरी कौन पहनता है यार। प्रियल निक की बात का कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसका पैर लहंगे में उलझ गया और वो गिर पड़ी। निक को उसे देखकर हंसी आने लगी। निक ने उसके पास आकर कहा, वेरी गुड। प्रियल ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझे देखकर हंस रहे हो? निक ने प्रियल को गोद में उठाकर कहा, तुम ही बताओ, तुम्हारी हरकतों पर हंसी नहीं आएगी तो क्या? अब बताओ, दौड़ना है अभी भी? पता नहीं ऐसे कपड़े लाती कहाँ से हो, ऐसे ही तुम्हें उठाना मुश्किल होता है, ऊपर से इन कपड़ों का बोझ अलग से। प्रियल ने आंखें दिखाते हुए कहा, आप नहीं सुधरोगे ना? निक ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, अगर बोर हो गई हो तो नीचे चले। प्रियल ने हामी भरी। निक प्रियल को रूम में ले जा रहा था कि तभी सामने से कबीर उनके पास आया। कबीर ने कहा, ओह आई एम सॉरी, शायद हम गलत टाइम पर आ गए। निक ने कहा, नहीं कबीर, प्रियल के पैर में चोट लगी है तब मैंने इसे उठा रखा है। बोलो, शायद तुम किसी काम से यहाँ आए थे? कबीर ने कहा, हाँ, हम परी से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। ओके, मैं प्रियल को कमरे में छोड़ आऊं, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे। प्रियल ने कहा, परी मेरी बहन है तो उससे जुड़े हुए फैसले लेने का हक मुझे भी है। मैं 5 साल दूर थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे परी से जुड़े फैसलों में शामिल नहीं करोगे। निक ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया, परी से जुड़े हुए फैसले लेने का हक सिर्फ परी को है, अब वो बड़ी नहीं रही। मैं बस कबीर का डिसीजन सुनना चाहता हूँ, उसके अलावा वही होगा जो परी चाहेगी, तो तुम अपनी इस छोटी सी नाक को इन सब में अड़ाने की कोशिश भी मत करना, वरना शायद फिर से हमारा झगड़ा हो जाए। अरे आप हमारी वजह से झगड़ा मत कीजिए, और प्रियल हमारा डिसीजन सुनना चाहती है तो हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कबीर बोला। निक, प्रियल और कबीर रूम में आए। निक ने प्रियल को बेड पर बिठा दिया जबकि वो कबीर के साथ काउच पर बैठा था। निक ने कहा, हाँ तो बताओ कबीर, तुमने क्या डिसीजन लिया है? कबीर ने कहा, हम परी से चाहे कितने भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन एक सच ये भी है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। निक, हम आप दोनों जैसे परफेक्ट कपल नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, निक ने हंसते हुए कहा, और सबको ये लगता है कि हम दोनों परफेक्ट कपल हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता कबीर, उन्हें बस अपने रिश्ते को बचाना आना चाहिए। फिर निक ने प्रियल की तरफ देखकर कहा, और वैसे देखा जाए तो इस मामले में गुड़िया बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, इसका बस चले तो आज ही सब कुछ छोड़कर वापस चली जाए। प्रियल ने कहा, हाँ तो कबीर, ये अच्छी बात है ना कि तुम परी से प्यार करते हो, ये बात तुमने पहले बता दी होती तो हम तुम दोनों की शादी करवा देते। अच्छा बताओ, कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? कबीर ने कहा, हमें उसके लिए टाइम चाहिए प्रियल, काफ़ी टाइम से परी और मैं एक दूसरे से दूर हैं, और इतने टाइम में चीज़ें काफ़ी हद तक बदल गई हैं। शादी जैसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले हम चाहते हैं कि हम परी के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। शादी से पहले नहीं, फिर तो मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती। अगर मेरी जगह मम्मा होती तो वो भी लिव इन रिलेशनशिप को कभी परमिशन नहीं देती, प्रियल ने कहा। कबीर ने कहा, लेकिन हमने लिव इन रिलेशनशिप का नाम नहीं लिया प्रियल, हम बस परी के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहते हैं और उन्हें समझना चाहते हैं। बाकी आप फिक्र मत कीजिए, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, हम अपनी लिमिट्स जानते हैं। प्रियल, आप इस बारे में बेफिक्र रहिए। निक, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने में क्या प्रॉब्लम है? देखो, तुम दोनों समझदार हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। प्रियल, हम दोनों की शादी भी 1 साल तक लोगों से छिपी हुई थी, प्रियल ने कहा, लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी थी। निक, मुझे बहस नहीं करनी प्रियल, बेहतर होगा कि हम ये डिसीजन परी पर ही छोड़ दें। अगर कबीर और परी साथ रहकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैं कभी परी को नहीं रोकूंगा। ठीक है, इस बारे में हम कल परी से बात करेंगे। वैसे प्रियल, हमारे घर में भी लिव इन रिलेशनशिप जैसा कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता। अगर परी हमारे साथ रहेगी तो हम दोनों एक रूम में कभी नहीं रहेंगे। कबीर अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था जबकि निक को प्रियल के बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा था। प्रियल ने कहा, क्या ऐसे गुस्से में मुझे क्यों देखे जा रहे हो? निक ने रूम बंद करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें छोटी छोटी बातें भी क्यों समझानी पड़ती हैं। कल को हमारे भी बच्चे होंगे तो क्या तुम उनकी लाइफ में ऐसे ही इंटरफेयर करोगी? प्रियल ने कहा, मेरे बच्चों पर मेरा पूरा हक है और परी पर भी, तो मुझे उनकी लाइफ से जुड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का पूरा हक है। अभी आप ये सब चीजें नहीं समझोगे, कल को आपकी बेटी आकर बोलेगी कि मुझे लिव इन में रहना है तो क्या आप उसे परमिशन दोगे? वेल, ये तो लड़के पर डिपेंड करता है, अगर लड़का अच्छा हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? प्रियल ने कहा, आप यूएसए में पले बड़े हैं और मैं इंडिया में, तो आप अपने हिसाब से सोचते हैं और मैं अपने हिसाब से। निक ने प्रियल के पास बैठते हुए कहा, इधर आओ मेरे पास गुड़िया, कबीर अच्छा लड़का है और वो परी को खुश रखेगा। अगर परी उसके साथ रहने के लिए हाँ बोल देगी तो तुम बीच में कुछ नहीं कहोगी। प्रियल ने निक से दूर होते हुए कहा, अच्छी बात है, सब करो अपने अपने मन की। प्रियल को निक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वहीं निक भी उसके बिहेवियर से नाराज था। फिर भी निक प्रियल को मनाने के लिए उसके करीब आया तो वो उससे दूर खिसक गई। प्रियल ने गुस्से में कहा, अब क्यों आ रहे हो मेरे पास? अब जाइए ना, आपने उससे कबीर से लिव इन रिलेशनशिप पर लंबा सा भाषण दिया। निक ने कहा, हाँ लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ समझ नहीं आओगी, अगर मैं तुमसे शादी ना करके पहले लिव इन का बोलता तब भी तुम ऐसे ही रिएक्ट करती। निक के सवाल का प्रियल ने कोई जवाब नहीं दिया। निक ने कहा, तुम्हारे बिना बोले ही मुझे जवाब मिल गया, तो अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। बोलते हुए उसने प्रियल का पैर अपने हाथों में लेकर कहा, देखो पैर पर सूजन आ गई है, मैंने मना किया था कि तुम नहीं दौड़ना, उसके बावजूद तुम वही करती हो जिस काम को करने के लिए मैंने मना किया हो। निक के चोट पर हाथ लगाने से प्रियल को दर्द हुआ और वो कराहते हुए बोली, आह निक मुझे दर्द हो रहा है, आप मेरा पैर छोड़ दीजिए।
निक ने कहा, पता नहीं किस पागल लड़की से मेरी शादी हो गई, जो छोटी छोटी बातों को लेकर जिद पकड़ कर बैठ जाती है और कुछ बोलो तो रोने लग जाती है। रुको मैं तुम्हारी ज्वेलरी निकालने में हेल्प करता हूँ, आगे से इतनी हैवी ड्रेस पहनने की कोई जरूरत नहीं है। निक ने प्रियल की चोट पर दवाई लगाकर उसकी ज्वेलरी निकालने में हेल्प की। निक ने कहा, ये लो गुरिया, हो गया, तुम सो जाओ और मुझे बता दो कि इन्हें कहाँ रखना है। प्रियल ने कहा, मतलब आज भी आपको मेरे करीब न आने का एक और बहाना मिल गया, मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू एखा था और आप मुझसे इतना नाराज हो गए। निक ने प्रियल के बालों को सहला कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है गुड़िया, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आखिर में तुमने मेरी बात को समझा भी तो वो बहस वहीं खत्म हो गई। तुम्हारे पैर में चोट लगी और तुम्हें दर्द हो रहा होगा, ऐसे में मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम सो जाओ, कल अगर ठीक हो जाएगा तब जो मन करे वो करना। जैन और आइलिया तो, निक ने बीच में ही कहा, वो भी सो गए होंगे, और ज्यादा मत सोचा करो, तुम अब बड़ी नहीं हो, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे और वो। प्रियल ने कहा, सो जाइए निक, अब आप भी ज्यादा मत सोचिए, इस लड़की को छोटी से छोटी बात समझाना भी कितना मुश्किल होता है, बस हर बात पर जिद करनी होती है, अभी इसने एक जिद पकड़ ली है कि करीब आना है तो मतलब कैसे भी करके मेरे करीब आना है। क्यों भूल जाती हो प्रियल, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे भी तुमसे दूर रहकर कोई खुशी नहीं मिल रही, मैंने मना किया था तुम भागने से, अब चोट लग गई तो उसका भी सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल रही है, निक ने सोचा। निक प्रियल को सुलाकर उसके पास लेट गया। अगले दिन सुबह सभी गर्ल्स पैलेस के हॉल में आइलिया के पास बैठी थीं और उसे परेशान कर रही थीं। इनायत ने कहा, हाँ तो अप्पी कल की रात कैसी बीती? आइलिया ने कहा, जैसी तेरी बीती थी, जाओ सब यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। हाँ यार ये बोरिंग है, देखो तुम्हारी बातें सुनकर बेबी भी सो गई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करो। हाँ तो आइलिया, कल तो पूरी रात जैन ने तुम्हें सोने ही नहीं दिया होगा ना? जिनी ने घुमा फिरा कर वही सवाल पूछा। आइलिया ने शर्माते हुए कहा, मुझे अम्मी ने बुलाया था, जाने दो मुझे तुम लोग। आइलिया वहां से उठकर जाने लगी लेकिन प्रियल ने उसे खींचकर फिर से पास बिठा लिया। परी, अरे यार तुम लोग क्यों सब मिलकर आइलिया दी को परेशान कर रही हो? आइलिया दी मैं आपके साथ हूँ। तभी प्रियल की नज़र कबीर पर पड़ी जो बाहर की तरफ जा रहा था। प्रियल ने कबीर को देखकर कहा, चिंता मत करो जल्द ही तुम्हारी बारी भी आने वाली है। फिर उसने अपनी आवाज़ तेज की और कबीर को आवाज़ लगाकर कहा, है ना कबीर? कबीर को उसकी बात समझ नहीं आई, वो उनके पास गया और प्रियल से पूछा, क्या कहा आपने, हम समझे नहीं। परी ने कहा, हाँ मैं भी नहीं समझी। समझना तो तुम्हें कबीर चाहता है परी, तभी कल रात निक से परमिशन लेने आया था कि क्या वो कुछ दिन तुम्हें अपने साथ लखनऊ में रख सकता है। चलो भाई अब हम तो यहाँ से जाना होगा लेकिन हमारी परी तो कई दिन तक लखनऊ आराम से घूमेगी। प्रियल ने निक के डिसीजन को उन सबको बता दिया। परी ने आंखें बड़ी करके कहा, क्या सच में जीजू ने परमिशन दे दी? कबीर तुमने पूछा जीजू से? कबीर भी प्रियल की बातों से थोड़ा हैरान था क्योंकि कल रात को प्रियल उसके डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अगली सुबह वो खुद परी को इसके बारे में बता रही थी। परी निक से बात करने के लिए उसके पास गई तो उधर प्रियल ने मुस्कुराते हुए परी को अपने पास रखने के लिए कबीर को हामी भर दी। सब लोग वलीमे की रस्म के लिए तैयारियां कर रहे थे, उधर परी भी निक और प्रियल के हाँ बोलने पर बहुत खुश थी। निक ने किसी और जरूरी रीजंस की वजह से जिनी को बेबी के साथ वापस यूएसए भेज दिया था, रॉन भी उनके साथ गया था। वो लोग शादी की आखिरी रस्म निपटाकर वापस कोलकाता जाने के बारे में सोच रहे थे। वलीमे की रस्म से पहले वो लोग मिलकर बात कर रहे थे। आलिया ने कहा, ये तो होना ही था, रस्म के बाद तो हमें फिर से काम पर लगना ही था ना। चलो कोई बात नहीं, इतने सारे काम के बाद थोड़ा एंजॉयमेंट हुआ तो अच्छा लगा। निक ने कहा, और तुम्हें किसने कहा कि रिसेप्शन के बाद तुम दोनों वापस काम पर जाओगे? मतलब मिशन पर तो आना ही है, लेकिन उससे पहले मैंने तुम दोनों के लिए 1 वीक का वेकेशन प्लान किया था। मुझे तुम दोनों की प्लानिंग्स का तो नहीं पता, लेकिन ग्रीस बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस बार मेरी चॉइस के हिसाब से चलो, जाओ आगे तुम दोनों को जहां भी जाना है अपनी पसंद के हिसाब से चले जाना। जैन ने खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच भाई, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, मैं तो वापस इसी बोरिंग लाइफ में जाने के लिए रेडी था। निक ने टिकट्स जैन को दी। प्रियल चुपचाप उन सबको देख रही थी। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, कभी मुझे तो ग्रीस नहीं घुमाया इन्होंने, बस एक बार, वो भी मेरे इतना जिद करने के बाद मुझे लंदन लेकर गए थे और वहां पर भी गोलियां चलने लगी। निक उसके पास बैठा था और उसने उसकी बात सुन ली। वो उसकी तरफ देखकर बोला, एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद तुम भी जहां घूमना है चल जाना। प्रियल ने कहा, अभी तो मुझे कहीं नहीं घूमना, लेकिन मुझे रिसेप्शन में पहनने के लिए ड्रेस चाहिए थी, क्या आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे? अगर मैंने ना कहा तो तुम फिर से मेरे साथ झगड़ा करने लग जाओगी, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। निक प्रियल को शॉपिंग कराने ले गया। वो दोनों ड्रेस खरीद कर वापस आ ही रहे थे कि तभी रूपाली किसी काम से लखनऊ आई हुई थी और उसने उन दोनों को एक साथ देख लिया। रूपाली ने कहा, ये तो जन्नत थी ना, लेकिन उसके साथ वो कौन था? फिर उसने गुस्से में कहा, ये लड़की यहाँ ऐश कर रही है और हम वहाँ इसकी वजह से इतने परेशान हो रहे हैं। इन सब के बाद तुम बच नहीं पाओगी जन्नत, एक बार वापस कोलकाता में पैर रखकर तो देखो, तुझे तो अब ताई ही देखेगी। रूपाली ने दूर से उन दोनों के साथ में फोटो क्लिक करके सुनहरी को भेज दी थी, जबकि उन तस्वीरों में निक का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। तस्वीर भेजकर रूपाली एक टैक्सी में बैठकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगी।